आयत नंबर 168 से इंशाल्लाह ताला। ये आयत दो दफ़ा आनी है, इसलिए इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमें लफ्ज़ों को साथ लेके आपको गौर व फिक्र कराऊंगी। इस वक्त आप सबकी नज़रें कहाँ होनी चाहिए? पारे के ऊपर। किसके पारे पे? कि दूसरे के, अपने पारे पे होनी चाहिए। आइए देखते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 168, या यूहन्नास, ए लोगो। पहले तो इस पे गौर कर लीजिए, या यूहन्नास, ए लोगो, ओ मैनकाइंड। ये क्या पता चलता है? जब भी कुरान पाक की कोई आयत या यूहन्नास से शुरू हो तो ये हम मुसलमानों के ऊपर हुज्जत है। किस बात की? कि तुमने ये पैगाम बंदों तक पहुंचाना है। ये आयत बताती है कि ये कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए। अच्छा, आपको थोड़ा सा याद आया कि नहीं, पहले पारे में चौथे ही रुकू में हमने क्या पढ़ा था? या यूहन्ना सुबुदु रब्बकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपने रब की इबादत करो। आया था ना, वहाँ आपको ये बात है। ये दूसरी दफ़ा आ रहा है। पहली दफ़ा जब या यूहन्नास आया, और ये वो आयत है जिसने कैट स्टीवन नाम सुना होगा आपने, यूसुफ इस्लाम के नाम पे जो आज है, उन्होंने इस किस्म की आयतों को सुन के सोचा था कि मैं तो इस किताब को मुसलमानों की किताब समझता था। आज भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं ना कि कुरान मुसलमानों की किताब है, तो फिर या यूहन्नास क्यों अल्लाह ताला कह रहे हैं? ये सब इंसानों की किताब है, या आज हम मुसलमानों ने छुपाई हुई है, क्योंकि हम खुद अमल नहीं करते और हमारे पास इतना वक्त ही नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, हमने कई लोगों को इस किताब से दूर किया हुआ है। तो पहला या यूहन्नास क्या था? जिसमें लोगों को अल्लाह की इबादत और बंदगी की दावत दी। अब दूसरा देखिए, या यूहन्नास उखलू मिम्मा फिल अर्दी, ए लोगो खाओ उसमें से जो के ज़मीन से दिया। क्या पता चला? कि इबादत के बाद जो दूसरी अहम चीज़ जिसका तذکرہ इस आयत में है, वो क्या है? खाओ। बहुत ही खूबसूरत बात है। आज आपको एक सवाल का जवाब मिल जाएगा कि ये जो हम खाते हैं रिस्क, और ये ना खाओ वो ना खाओ, आखिर इसका हमारी इबादत से क्या ताल्लुक है? आयत का खुलासा करके आगे चलते हैं। खाओ मिम्मा फिल अर्दी, उसमें से जो ज़मीन से है। ज़मीन से ही आता है ना रिस्क। आम देखिए, सब्जियां भी ज़मीन से ही आती हैं, फल भी ज़मीन से आते हैं, लेकिन दूध ज़मीन से नहीं आता। लेकिन जिस भैंस से दूध मिलता है वो क्या खाती है? चारा। और चारा कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, आप लिख के देख लें, किसी ना किसी तरह से उसका ताल्लुक ज़मीन में से है। ज़मीन के अंदर से अल्लाह ताला कहते हैं जो निकलता है वो खाओ। यहाँ से आपको एक चीज़ सिंपल सी पहले तो पता चल गई कि हर चीज़ खाने की इजाज़त है। समझ लीजिएगा, हलालन तय्यबन, दो लफ्ज़ याद कर लेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। जो कुछ ज़मीन से निकलता है खाओ, वेजिटेरियन जिसको आप कहते हैं अपनी ज़ुबान में, हर सब्ज़ी हलाल है। इतनी बात लिख लें, फिर आगे चलें, क्योंकि ये पहली दफ़ा मौजू आ रहा है तो मैं इसको ज़रा आहिस्ता आहिस्ता बोलना चाह रही हूँ ताकि आप नोट डाउन कर सकें। सब सब्जियाँ हलाल हैं, कोई ऐसी एक भी सब्ज़ी नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वो नहीं खा सकते। ठीक है, पहली बात है, ज़मीन तक ही रहते हैं अभी हम। दूसरी शर्त क्या है? तय्यबन, तय्यब हो। हलाल क्या है और तय्यब क्या है, इन दोनों का फ़र्क समझ लीजिए। हलाल दो किस्म का होता है। नंबर एक, कुछ चीज़ें अपनी ज़ात से ही हलाल है, मसलन सब्ज़ी, गाजर, मूली, आलू, ठीक है, ये हलाल है, अपनी नफ्स के साथ हलाल है। इसको खाने की शर्त क्या है? कि वो तैयब भी हो। कैसे? साफ हो, बासी ना हो, गली सड़ी ना हो, कीड़ा ना लगी हो। कुछ चीज़ें सब्जियों की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में सब हलाल है, लेकिन अगर आप देखें कि आप देख रहे हैं कि एक सेब है तो उसके अंदर बिल्कुल काला रंग आ चुका है, ख़राब हो चुका है, तो वो क्या हुआ? हलाल तो है, तैयब नहीं रहा। और तैयब किसको कहते हैं? ताब यतीब तैयब, तीब से है, खूबसूरत लगना, खुश। तैयब कौन सा होता है? जो पाक हो, क्योंकि आज साइंस की ज़बान में आप कहेंगे तो उसमें जरासीम आ गए ना। इस्लाम ये नहीं कहता कि सब कुछ खा लो, पहले ये देखो कि वो चीज़ हाइजीनिक भी है कि नहीं, सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या होता है हलाल का? मिसाल है, सेब की मिसाल आपको मैंने दी, सेब हलाल है, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर वो सेब जिन पैसों से खरीदा है, वो पैसे सही नहीं है, शराब बेची आपने, जुए में खेले, किसी की चोरी करके खाए, हराम, सूद की कमाई, जो भी हराम की चीजें, वो आगे डिटेल्स आएंगी। तो सेब जैसे, ये खजूर हलाल है ना? बिल्कुल हलाल है, ये तैयब भी है, इसमें अंदर कीड़ा नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल फ्रेश डेट है, ठीक है? तो मैं कह सकती हूँ कि ये खजूर हलाल भी है और तैयब भी है, और मुझे यकीन है कि जिन पैसों से ये खरीदी गई है, वो भी कोई किसी की नाजायज कमाई नहीं है, किसी का हक नहीं मारा हुआ। वो आगे हम पढ़ेंगे क्या किस्में होती हैं। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मैं खजूर पकड़ूं, फिर मैं इसको तोड़ूं, तो इसमें कीड़ा लगा हो, पुरानी हो, सूंघू तो इसमें स्मेल आ रही हो, तो मैं कह सकती हूँ कि ये खजूर भी हलाल थी, जिन पैसों से खरीदी वो भी जायज़ थे, लेकिन अब ये खराब हो गई है, तो ये तैयब नहीं रही, तो मुझे नहीं खानी। ठीक, इतनी बात तो सबको क्लियर है ना? तो खजूर अपनी जगह हलाल है, खरीदने का सोर्स भी हलाल है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे एंगल पे चलिए, मेहनत की कमाई है, पैसे बहुत मेहनत से कमाए, कोई उसमें नाजायज चीज नहीं, चीज है भी देखने में बड़ी खूबसूरत, खुशबूदार, लेकिन वो चीज क्या है? मसा खिंजीर का गोश्त, पिग, जिसको आप कहते हैं सुअर। अब वो, या आगे जो चीजें आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज हलाल ही नहीं है। तो फिर दो बातें क्या हुई, सबका खुलासा बता दीजिए कि सफाई हलाल क्या, पाक, साफ। एक होती है बातनी सफाई, एक होती है जाहरी सफाई। चीज भी साफ हो, अच्छी भी हो, और उसको जिस चीज से लिया है वो भी जायज हो। अभी सिर्फ इतने बात पे रहे, क्योंकि आगे आयत आएगी तो आप खुद देखते जाएंगे। अभी बस इतना का, सब कुछ खाओ, हलाल और तैयब खाओ, बासी खाने ना खाओ, मक्खियां बिन बनाती हैं वो दही बड़े ना खाओ, 4 दिन पुरानी फ्रूट चाट ना खाओ जिससे तुम बीमार हो जाओ, ये खा लो, हलाल तरीके से मिलती हैं, खाते जाओ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या कहा, वला तत्तबियो, और ना तुम पैरवी करो, किसकी, खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों की, क्योंकि इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। क्या करता है वो, इन्नमा या मुरुकुम, बेशक वो तुमको हुक्म देता है, किसका, बिसुई, बुराई का। नंबर एक, पहला स्टेप इस पे ए लिख ले, सबसे पहला शैतान का हुक्म होता है सू का, बुराई का। सेकंड स्टेप क्या होता है, इसके बीच में एक एरो डाल ले, वल फहशा, फिर फुहश पे ले जाता है, बेहयाई पे। इस स्टेज पे जब बंदा पहुंच जाए, तो थर्ड स्टेज, वन तकुलू अलल्लाही मा ला तालमून, यहां तक कि तुम्हें वो बातें कहने पे मजबूर करता है जिनको तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह के खिलाफ बातें करने वाला बना देता है बंदे को। पहले तो इस आयत को आप थोड़ा सा इस टेक्स्ट के साथ समझ लीजिए कि मक्का में कुछ लोग कुछ चीजों को अपने बुतों, जो उनके बुत थे या जो उनके बुजुर्ग थे, पीर, जो उनकी खुशी के लिए नहीं खाते थे, हलाल चीज को हराम कर देते थे। हम इंशाल्लाह सूरत अल-अनआम में ये तफसील से पढ़ेंगे। पूरी सूरत का बुनियादी टॉपिक ये है कि कुछ जानवर थे, पैदा होते ही उनका कान चीर देते थे। मिसाल देती हूँ कि जैसे कोई बकरी है, पैदा होती थी ना, तो उसका कान चीर के एक किस्म की निशानी कर देते कि ये हमारे बुजुर्गों की न्याज है। फिर क्या करते कि उनको अपने बुजुर्गों की कब्रों पे छोड़ाते, बुत थे तो उसके स्थान पे छोड़ाते। अब वो गाय, बकरी, भैंस, जिधर मर्जी चरे चुगे, किसी के खेत में से खा जाए, किसी का पानी पी जाए, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता था, बिल्कुल हलाल जानवर थे, लेकिन ये अपने बाप दादा के नाम पर उसको हराम समझते थे। इसी तरह बहीरा, साहिबा, हाम, हाम की मिसाल देती हूँ, ऊंट अरबों में बहुत आम है, ऊंट का गोश्त भी बहुत खाते थे, ऊंटनी का दूध भी पीते थे। जिस ऊंट से 10 बच्चे पैदा हो जाते थे, यानी जिस ऊंट की वजह से 10 बच्चे पैदा हो जाते ना, तो कहते थे ये ऊंट अब बहुत पहुंच गया, बहुत पहुंचा हुआ है, बुजुर्ग है कि इसके 10 बच्चे हो गए, उसको बुतों के नाम पे खुला छोड़ देते थे। आप इसको यूं समझें, अगर आपका कभी इत्तफाक हुआ हो कि कभी आप इंटीरियर सिंध गए या पंजाब के अंदरूनी गांव जहां बिल्कुल इल्म कम है, जहालत है, तो आप देखेंगे कि कुछ गायें, भैंसे, बकरियां लोगों ने कब्रों पे छोड़ी होती हैं, और लोग ना उनको खाते हैं ना उनका दूध पीते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये हमारे इन बुजुर्गों की खुशी के लिए हमने इधर छोड़ दी है। ऐसी बात सुनी है? बिल्कुल उससे मिलती हुई मिसाल है कि जायज हलाल चीजें नहीं खाते थे। इसी तरह आप सूरत अल अनाम में ही पढ़ेंगे कि अगर एक बकरी है, उसके पेट में बच्चा है, प्रेग्नेंट है बकरी, अब जब बकरी को ज़िबा करते थे तो अगर पेट का बच्चा जिंदा निकल आए तो कहते थे इसको सिर्फ हमारे मर्द खाएंगे, और अगर बच्चा मुर्दा निकल आए तो कहते थे औरतें खा लें। आपको बात नहीं समझ आ रही ना, तो मैं आपको थोड़ा समझती हूँ। कभी आपने कुछ अपने इंडिया पाकिस्तान की रस्मों के बारे में सुना? नाम सिर्फ समझाने के लिए ले रही हूँ, कोई तासुब दिलाने नहीं। मतलब जैसे आपने कभी कुंडों के बारे में कुछ सुना? रजब के महीने में कुंडे भरते हैं, उसकी शरायत। ये तो भी चंद दिन पहले मुझे किसी सिस्टर ने सुनाया, कोई भी थी, मुझे याद भी नहीं रहती बात किसकी थी, लेकिन बिल्कुल रिसेंटली किसी ने मुझे सुनाया कि मैं एक महफिल में गई और उन्होंने वहाँ कहा कि हम 10 बीवियों की कहानी पढ़ेंगे। कहती मेरे पास एक बच्चा था छोटा, मैं उसको भी ले गई, तो पहले तो उन्होंने मेरे ऊपर ये झगड़ा डाल दिया कि इस महफिल में एक मर्द नहीं आ सकता, इस बच्चे को क्या करना है। कहती मैंने उन्हें कहा कि मैं इस बच्चे को कहाँ छोड़ूं। कहती नहीं, इस कमरे में नहीं रह सकता। खैर जो भी कहानी हुई होगी, कहती उस बच्चे को सुला दिया। जब वो सो गया तो कहा चलो जी मर्द नहीं रहा, औरतें रह गई हैं। फिर 10 बीबियां नहीं जमा हो रही, घरों से 10 औरतें बुलाई, फिर 10 सहाबिया या किन की कहानियां सुनाई, और कहती तो उसके बाद फिर लड्डू आ गए, और जब लड्डू आए तो वो खैर बीबी नहीं खाना है, उतने में बच्चा उठ गया, बच्चा लड्डू मांग रहा है, कह रहे नहीं ये लड्डू बच्चा नहीं खा सकता। ये किसने बताई बातें? आपने इस तरह की कहानियां बहुत सुनी होंगी, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये मेरी जुबान से आपको फायदा नहीं होना सुनने का, आप कहेंगे शायद मेरे ख्याल आते हैं, आप कुरान की आयतें पढ़ेंगे। उस मुआशरे के कुछ और रस्म रिवाज थे, आज इंडिया पाकिस्तान के हमारे मुसलमानों और वहां रहने वाले लोगों के फर्क हैं। इस तरह की बातें करके और सारा कुछ करते किस नाम पे थे? अन तकूलुल्लाहि मा ला तालमून, कहते थे मैं अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। आज आप देखिए जो कुंडे भरते हैं, आपने कभी 11वीं की न्यास का नाम सुना? भाई क्या होती है कि हर महीने की चांद की 11 तारीख को दूध की खीर पका के बांटो, ना बांटा तो तुम्हारी भैंसे मरेंगी, और वो एक खास बुजुर्ग होंगे कोई, उनके नाम पे बांटते हैं। भाई 11वीं की क्यों नहीं, या 12वीं की क्यों नहीं पकाते? 13वीं की पकाएं, 14वीं की खीर पकाएं, 15वीं की पकाएं। अल्लाह ने पैदा किया, गाय भी उसने दी, भैंस भी उसने दी। तो अभी सिर्फ ये आप सुन लें, कानों से टकराएं, अभी इसकी डिटेल में ना जाएं, सिर्फ इसमें अल्लाह ताला तनकीद करते हैं उस सोसाइटी पे जो बाप दादा के तौर तरीकों को अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में बड़ा कर देते हैं। और यहाँ 3 स्टेप्स हैं, शैतान का ये असल में काम है। जिस तरह देखिए हराम नहीं हम खा सकते ना, इस तरह हम हलाल छोड़ भी नहीं सकते। एक ये कि किसी को डॉक्टर ने मना कर दिया है कि आप रेड मीट ना खाएं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वेट लूज बढ़ जाता है, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। लेकिन खुद पे हराम कर लेना, कुछ यंग बच्चों की आदत होती है हम फिश नहीं खाते, कोई कहते हैं हम मीट नहीं खाते, कोई कहते हैं हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाते, हराम नहीं कर सकते आप अपने ऊपर कुछ। पूरी सूरत है सूरत तहरीम के नाम पे, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ए नबी आप उस चीज़ को हराम कैसे करते हैं जिसको अल्लाह ने हलाल किया। अब वहां वाकया सुनेंगे कि अल्लाह के नबी ने एक दफा अपनी बीवियों की खुशी के लिए शहद को अपने ऊपर हराम कर दिया कि मैं शहद नहीं खाऊंगा, इससे बू आती है मुंह में से, तो अल्लाह ताला ने आयतें उतार दी। ये कैसे हो सकता है? नबी को भी नहीं इख्तियार दिया कि हराम को हलाल और हलाल को हराम कर दे। तो यही बात यहाँ बता दी गई कि ऐसे लोग शैतान के नक्शे कदम पे चलते हैं, और जब उनको शैतान गलत चीजों पे डालता है, सबसे पहला शैतान का स्टेप क्या होता है? बिस्सू, ये समझ लीजिए। सबसे पहले शैतान इंसान से छोटी बुराई कराता है, इसको आप किसी भी टेक्स्ट में समझ लें, जरूरी नहीं कि इस खाने पीने में समझिए। लेट्स सी, मिसाल दे देती हूँ कि बिस्सुई क्या है। शैतान किसी के पास आके उसको कोई बुरा काम करवाते, कोई नहीं ना, अब देख लो मूवी, अब क्या हुआ भला, कुरान तो तुम अब पढ़ ही रही हो, तो भला मूवीज भी छोड़ दो, सारी छोड़ दो। अच्छा जी ठीक है, सबसे पहले वो उसको कोई भी फिक्शन के नाम पे गंदे नावल पढ़ना, रिसाले, डाइजेस्ट, कोई भी फिल्में दिखाने पे ले आता है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं ना, अब ये तो फन है, फिर वीकेंड इसीलिए तो होता है, इतना लंबा वीकेंड है, अब हम क्या करें। मिसाल दे रही हूँ सिर्फ आपको। सबसे पहले सू, सू कहते हैं छोटी बुराई को, सू सी या बुरी चीज, यानी छोटे छोटे गुनाहों पर लाता है। कोई बात नहीं ना, हम बुरे काम कर थोड़ी रहे हैं, हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं ना, पहला मरहला ये होता है। फर्स्ट स्टेप पे। मिसाल है किसी को कह देगा कि चलो ना कोई बात नहीं, वो देखो तो उधर नाइट क्लब है तो लोग तो उधर जाके शराबे पीते हैं, बस वो तुम अंदर जो बारबेक्यू स्टोर है उसमें से बारबेक्यू खा लो, चलो बैठ जाओ, फन देख लो, फिल्म देख लो, सिनेमे में चले जाओ, मिसाल ले ले, चलो जाओ सिनेमे में फिल्म देखो, फिर क्या हर्ज है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। शुरू में इंसान को ये भी बहुत बड़ा लगता है क्योंकि उसने ये नहीं किया होता, पहली दफा उसको उसमें खौफ आता है। कुछ दिन तक अगर वो काम करता रहे बंदा और उसको कोई ना पकड़े, कोई बुराई ना हो, तो अगले दिनों में फिर शैतान क्या ले आता है, वल फख्शा, फुखश पे ले आता है। फुखश क्या है? जिसका ताल्लुक सेक्स के साथ है। शुरू में कहते हैं सिर्फ फिल्में देखो, कोई बात नहीं, तुम सबक आमोज फिल्में देखते हो। अमूमन हमारे कल्चर में क्या कहते हैं, ये बड़ी घरेलू फिल्म है। तो भाई घरों में फैली हुई स्टोरियां थोड़ी है। लोग कहते नहीं, हम फिल्मों से सीखते हैं कि वो हीरोइन को ऐसा हुआ था तो वो फिर देखा ये हुआ तो ये हुआ था। तो भाई आपकी माँ नानी दादी कितनी कहानियां जिंदगी में वो नहीं सीखते। अमूमन यंगस्टर्स को शुरू में फिल्में या जो भी देखनी होती है वो इसी सोचते, जब वो होता है ना तो उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि फिर वो कहते हैं वो हम हीरो हीरोइन जैसे बनेंगे, वो जो पहनते हैं हम भी वही पहनेंगे, वो जो हरकतें करते हैं वो हम भी करेंगे। तो जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता फुखश आ जाता है, थोड़ी जुरत बढ़ती है। वो कपड़े जो पहले कोई फिल्मों में पहनता हो तो लोग कहते थे बंद कर दो, ये बड़ों के देखने वाली फिल्में हैं, आज वो बच्चा बच्चा देखता है। वो सीन जो आज से मेरा ख्याल है 10-15 साल पहले, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वो सीन जो स्क्रीन पे आना, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाप और भाई बैठे और बहनें देख लें, सच है कि झूठ। एक जुमला सुनते थे, है तो बेवकूफी के, कहते थे नहीं ये बड़ों के देखने वाली फिल्म है, अडल्ट ओनली, हालांकि उनके लिए भी नहीं है वो। आज की फिल्में छोड़ी, आज के आप सिर्फ किसी के घर में आप किसी काम से गए हो ना और पीछे ऐसी आवाज वो बंद करके स्क्रीन भी खोल देना, मैं कह सकती हूँ कि आज के दौर के जो एडवर्टाइजमेंट चल रहे होते हैं और जो शोज की एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ वो भी उन लच्चर फिल्मों से ज्यादा गंदी होती है। हया कैसे खत्म हुई? बाप भी बैठा है, बेटी भी बैठी है, गंदे कपड़े देखे, कोई खाने की तरकीब सिखा रही है औरत आपको, आप कहते हैं हम खाने की तरकीब सुन रहे हैं, तो उसका हुलिया ऐसा है कि नजर आपकी उधर जाती है। फुखश, हमेशा शैतान छोटी बुराई से बड़ी ले जाता है, फिर कहेगा क्या होता है, सब करते हैं तुम भी करो, फिर भी पहनो। अच्छा ये दूसरा स्टेप हो गया ना, जब बंदा फुखश में इंडल्ज हो जाता है, इंडल्ज समझते हैं, उसमें डूब जाता है, तो फिर अगली जरूरत आती है वान तकूल अल्लाह माला तालमुन, फिर जुबान खुलती है अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह इज नॉट सो मीन, इट्स ओके, अल्लाह ने खूबसूरत बनाया तो दिखाएंगे हम, है देखने की चीज़ बार बार देखो। फिर औरतें अपने आप को एक्सपोज करती हैं, जिसम उनका दिखता है, फिर भी कहती हैं खैर है, ऐसा नहीं कि अल्लाह हमें पकड़ेगा, जब अल्लाह ने खूबसूरती बनाई है तो कहता है देखो, फिर बातें करते हैं लोग। शैतान के ये स्टेप्स हैं, छोटी बुराई बड़ी करवाता है, बड़ी बुराई को फिर और बड़ी कराता है, हद तक के बंदे को शिर्क तक पे अल्लाह ताला की जात के बारे में खिलाफ डालता है। और आप देखिए कि इन सारी चीज़ों का आगाज कहाँ से आया, यहाँ अब आप रब देखें, अभी आगे दोबारा आना है, इसलिए आप इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद भी गौर करेंगे। कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तैयबा, रिस्क के हलाल और अच्छे कामों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगला सबक शुरू ही शायद से होगा, जब हमारे सोर्स ऑफ इनकम में खराबी है ना, मसलन जो लोग शराब पियेंगे ना वो दूसरे गलत काम भी करेंगे, ये तो मानते हैं आप। अरबी में शराब को उम्मुल खबाइस कहते हैं, सारी गंदी चीज़ों की माँ, क्योंकि जहाँ शराब होगी वहाँ जुआ भी होगा, वहाँ जिना भी होगा, और वहाँ फुहाशी भी होगी, इज्जतें भी लुटेंगी, चोरी भी हो जाएगी, वहाँ कत्ल तक हो जाएगा, यही इस आयत का मतलब है। इस्लाम कहता है शुरू में ही रुक जाओ, इस्लाम को कोई नफरत नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं किसी चीज़ से, लेकिन इस्लाम हमारी अक्लों का तहफ़ करते हुए हमें ये बात कहता है कि तुम अपने ज़ौक को अच्छा रखो, अपनी फितरत पे रहो, साफ़ चीज़ें खाओ, गलत चीज़ें ना खाओ, अखलाक को ख़राब करने वाली चीज़ें ना खाओ। आप बताइए सिगरेट क्या हलाल और तैयब है? शराब हलाल और तैयब है क्या? नहीं है ना। तो अगर इस्लाम इन चीज़ों से रोकता है तो इसमें हमारा फ़ायदा है। आज वेस्ट में आप देखिए कितनी कोशिशें करते हैं लोग इन चीज़ों से लोगों को आज़ाद करें, लोग नहीं छुटते। और जब शराब हराम हुई थी, आगे आएंगे आयतें इंशाल्लाह थोड़े ही दिन बाद, आप देखेंगे स्टेप्स में शराब हराम हुई, लोग पानी की तरह शराब पीते थे अरब में, इस्लाम ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको ख़त्म किया कि आपको कोई शराबी दिखेगा नहीं उनमें। ये तो अलग बात है कि आज हमने अपने दीन पर अमल छोड़ा तो हम भी सारी खराबियों में आ गए। तो अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, खुलासा के इतनी बात का ताकि आगे हम चले, कि हलाल खाना, अकल हलाल और सच्ची बात करना, सिदके मकाल कहते हैं इसको, सच्ची बात करना और हलाल खाना, ये जिंदगी में कामयाबी के दो गहरे असूल हैं। आपके पेट में जो अच्छा खाना जाएगा ना, तो आप अच्छे काम करेंगे, बुरा खाना जाएगा तो बुरे काम करेंगे। और इस पे बहुत सारी हदीसें हैं जो इंशाल्लाह हम आगे जाके नोट करेंगे कि जब बंदे के पेट में हराम के लुक में होते हैं, गलत होते हैं, तो अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है, ना उसका हज और ना उसकी नमाज कबूल करता है। एक रिवायत नोट कर लें, सही मुस्लिम की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स सफ़र करके, बाल बिखरे हुए, मट्टी, सफ़र की यानी सारी तकलीफें उसके ऊपर है, फिर बैतुल्ला जाता है, खाना काबा में, फिर वहाँ जाके अल्लाह से दुआएं करता है, या रब्बी, हाय मेरे रब है, मेरे रब, दुआएं मांगता है, आसमान से पुकार आती है कि कैसे इसकी दुआ कबूल हो। क्यों? कि मत अमहू हराम, इसके पेट में जो खाना है वो हराम का है, वह मशरबहू हराम, और जो पानी इसके पेट में जो पिया उसने वो हराम है, मलबसहू हराम, इसके जिस्म पे लिबास जो वो हराम की कमाई का है, वह गुज़िया बिल हराम, और जो गज़ा इसके जिस्म से जिससे ये मोटा हुआ है, ये सब हराम से है। अल्लाह अकबर। तो हलाल की आदत डालना अपने आप को बुराइयों से रोकना। अल्लाह के नबी ने हजरत साद बिन वक़ास से फरमाया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ करें, कितने खुशकिस्मत है ना आपसे दुआ कराते थे। अल्लाह के नबी ने उनके लिए दुआ की और कहा कि ऐ साद, पाकीज़ा चीज़ें खाओ और हलाल लुकमा खाओ, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। तो गोया कि आपको पता चल रहा है कि अगर हमारी दुआएं कबूल नहीं होती तो उसकी वजह हमारे खाने पीने में खराबी है। एक हराम लुकमा पेट में जाता है ना, 40 दिन तक उसकी वजह से इंसान की दुआएं कबूल नहीं होती, इबादत कबूल नहीं होती, और जो गोश्त पोश्त उससे खाया पिया वो जहन्नम के लायक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत 170 पे गौर कीजिएगा, व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है यानी जब वो ये गलत काम करते थे और कोई उनको जाके समझाता था, व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता था, इत्तबेउ, तुम पैरवी करो, किसकी, मा अनज़लल्लाह, उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया, वो क्या आप सब बताइएगा, कुरान और हदीस, इस कुरान में जो हुक्म है उसको मानो और जो हदीस में उसको मानो, इत्तबेउ, पैरवी करो अल्लाह के नाजिल करदा की। जवाब सुनिएगा उनका, कालू, वो कहते हैं, कौन कहते हैं, वो जो बाप दादा के नाम पे उल्टे सीधे काम करते थे, बल नत तबियो, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे, किसकी, मा अल्फईना अलैहि आबाअना, उसी तरीके की जिस पे हमने अपने बाप दादा को पाया। सुनिएगा भी, अल्लाह के किसी हुक्म को सुनकर ये कहने की बजाय कि कल तक नहीं पता था, नहीं करते थे, आज पता चल रही है, कोशिश कर लेंगे, ख़त्म हो गई बात। अल्लाह ये तो नहीं कहता कि बंदा एक ही दम दौड़ने लग जाता है, लेकिन मान तो लो, मैं करूँगी, नहीं हो सकता फिर कोशिश करते हैं, करते हैं, अल्लाह मदद करता है। लेकिन इनका जवाब क्या था, नहीं, हम अल्लाह का हुक्म सुन के नहीं मानते, बल्कि हम तो उसी तरीके पे चलेंगे जिस पे हमारे बाप दादा चलते थे, हम बाप दादा के तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। ये था असल में इसमें शिर्क, कि बास दफा बंदे को बाप दादा के नाम पर शैतान गलत से गलत काम करवाने पे माइल करता है और अल्लाह की बात भुला देता है। यहाँ जो लफ्ज़ है ना अल्फ़ईना, अल्फा कहते हैं इत्तफाकन किसी चीज को पा लेना, सडनली कोई चीज आपको मिल जाए, किसी चीज को खुद ब खुद पा लेना, हिजाब दूर होने पर किसी चीज को मौजूद पाना, यानी इसके लिए इन्होंने कोशिश नहीं की, बस बाप दादा को करते देखा। खैर, बात पूरी करते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, अच्छा वाकई बाप दादा का नाम लेके गलत काम करते हो, तो फिर ये बताओ कि अवलो का ना आबाहुम ला याकिलू ना शैया, अगर जो उनके बाप दादा को समझ ना हो, वो तो बेचारे ना समझी में करते गए, उन तक तो कोई सही बात बताने वाला पहुंचा ही नहीं, तुम्हें बात पता चल गई तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे, वला यहतदून, और उनको सीधी राह नहीं मिली थी। क्या बताया गया इस आयत में कि बाप दादा का नाम लेकर लोग अच्छे काम नहीं करते। यहाँ आप जरा थोड़ी सी हम बात करेंगे, इंसानों का एक स्टाइल रहा है कि गलत काम बाप दादा का नाम लेके करता है और अच्छे कामों में बाप दादा के तरीके छोड़ देता है। चलिए हम आपस में डिस्कशन करते हैं, हम सब अपने ऊपर लेते हैं, हम सब पीछे अपने खानदान के बुजुर्गों को देखें, आज से कोई 25-30 साल पहले के बुजुर्ग, उससे भी पीछे हमारी नानियां, दादियां, फूफियां, हमारी माँ की नानियां। आप ये बताइए कि क्या आज हमारा लाइफस्टाइल और हमारी दादी परदादी के वक्त का लाइफस्टाइल एक ही है? क्या हम अपनी दादियों जैसे कपड़े पहनते हैं? कितनी बाहयात थी वो, सर नहीं खोलती थी, कपड़े उनके ढीले ढाले होते थे। क्या आज हम औरतें, बच्चियां, यंग आज की जो, वो क्या वैसे ही बाहया कपड़े पहनती हैं? जो पहले दौर में उनकी मेहमान नवाजी कितनी थी, वो कितना सब्र था उनमें, कनात कितनी थी। उस दौर की औरतें घरों में बैठ के सिर्फ बच्चे पालती थी, क्या आज की औरत यही करती है? उसको तो सारे शहर में फिरना है, कमाना है, लाना है, फिर घर आके भी सफाइयां करनी, खाने पकाने, मियाँ को भी खुश करना। दुनियावी तौर तरीकों में कभी को बाप दादों को नहीं मानता। कभी आप में से, मेरे में से किसी ने ये कहा कि भाई मुझे तो वही आज से 50 साल पुराना सोफा सेट लेना है अपने घर में जो मेरी दादी के वक्त में था। वो तो बूढ़े पहले दुनिया में बाद में जाते हैं, उनकी चीजें हम पहले उठा के फेंक देते हैं। कपड़े हम उन जैसे नहीं करारे पहनते आज, वो लंबी लंबी चुनरियां और दुपट्टे और ढीली ढाली कमीजें पहनते हैं। और आज जो हम पहनते हैं, कभी अपनी दादी को उस तस्वीर में सोची, हमारी दादी पर नानी इस तरह के वेस्टर्नाइज कपड़े पहन के फिरती होंगी? उस पे कुछ नहीं बोलते। और जहां दीन की बात, इबादत के तरीकों की बात है, कहते हम बाप दादा के तरीके की बात मानेंगे। आज जो साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और एटॉमिक एनर्जी और फलां हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बाप दादा ने तो कभी नाम भी नहीं सुने थे उन इल्मों के, तो फिर क्यों सीखते हैं आप इंग्लिश? आपकी दादी को इंग्लिश आती थी, तो फिर आप क्यों बोल रही हैं? आपकी नानी जो थी वो पैंट्स पहनती थी, तो आप क्यों पहनती हैं? मिसाल दे रही हूं कि अच्छे काम बंदा अपनी मर्जी से, जो दिल चाहता है, नफ्स की ख्वाहिश के लिए करते हैं। और जहां कोई रस्म और रिवाज, इबादत के तरीके की बात है कि वो मेरी दादी तो ये पकाती थी, वो तो उस कब्र पे जाती थी, वो वहां न्याज देती थी, कहते हमने वही करनी है। हालांकि समझिए कि वो सीधे साधे लोग थे, उस दौर में भी इल्म इतना आम नहीं था, भोल बना था। हमारे अपने बड़ों में लोग क्या कुछ नहीं करते। और आपको ये पता है कि नहीं पता कि आज हम जो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुक रखने वाले मुसलमान हैं, 2-3 पुश्त पीछे चले जाएं तो हमारे बड़ों में हिंदू सिख थे। ये आज अगर हम खुद को मुसलमान कहते हैं तो कैसे कहते हैं? हमारे बड़ों में कोई मुसलमान हुआ था तो आज हम उसकी नस्ल में मुसलमान हैं। और इस्लाम वो दीन है जो शुरू से शुरू हुआ था। ये कहानी आप सुन चुके हैं कि शुरू में सब मुसलमान थे, आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने बहकाया, कोई किधर पहुंच गया, किसी बुत के पीछे वो बर्त बिकल गए। अल्लाह ने हमारे बड़ों में किसी को समझ दे दी, आज हम मुसलमान हैं, राइट? तो अगर आप कहें कि नहीं जी मेरे माँ बाप को तो ये समझ नहीं आया था, तो फिर मुझे भी ना समझाओ। कोई करता है ऐसे? मेरी माँ को कंप्यूटर नहीं चलाना आता था, मैं भी नहीं चलाती, आप हैं ऐसे कोई करने वाले? भाई मैं नहीं कंप्यूटर चला सकती, मेरी अम्मी को कंप्यूटर नहीं आता, अकल ही नहीं बनती। तो जहां दीन की बात है, इसको आप कहते अंधी तकलीद, लकीर का फकीर होना। तो खुलासा क्या है? इस्लाम अंधी तकलीद से बचाता है। अकल इस्तेमाल करो, यूज योर विजडम। अल्लाह ने अकल दी, तुम्हें समझ दी, तुम्हारी आंखें देखती। मिसाल है कि अगर हमारे बाप दादा में कोई अल्लाह को नहीं मानता था, अब हमें समझ आ गई कि अल्लाह ने इतना कुछ बनाया, मैं तो उसको मानती हूँ, तो क्या गलत बात है? हमारे बाप दादा में हो सकता है को किसी एक बुजुर्ग को बड़ा समझता हो। मिसाल देती हूँ मैं आपको कि जी ये बुजुर्ग हैं, बस सब इसके आगे झुके, इनके हाथ चूमे, इनकी बातें माने, वो बेचारे भोलपने में मान लेते थे। हमें आज समझ आ गई कि इस इंसान के तो इख्तियार में कुछ भी नहीं। हमारे सर में दर्द हो जाए, ये ठीक नहीं कर सकता, बारिश हो, ये धूप नहीं ला सकता, तो हम उसको क्यों माने? तो इस्लाम क्या चाहता है कि अपनी अक्ल से सोचो। और याद रखिए कि दीन और मजहब बंदे के अपने दिल के साथ होता है, खानदान से नहीं होता। अगर मेरा खानदान सारा जो है वो खाना काबा में जाके वहां की खिदमत भी करने लग जाए, लेकिन अगर मैं गलत काम करूंगी तो मुझे उनकी खिदमतें फायदा नहीं देंगी। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि इनकी बातों को छोड़ो, ये तो ऐसे हैं। अब आयत 171 जो आखिरी आयत है सबक की, इस पे गौर कीजिएगा। आयत कहाँ नजरें होंगी हमारी? पारे पे होंगी। शाबाश। व मसलुल्लज़ीना कफरू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। बड़े गौर से समझेंगे तो ये आयत समझ आएगी, वरना नहीं। और उन लोगों की मिसाल जिन्होंने अल्लाह के बताए हुए तरीके पर चलने से इनकार कर दिया, कैसी है? कमसली, जैसी मिसाल, अल्लजी, उस शख्स की, कौन? यनएकू, जो चिल्लाता है, शाउट करने के मानों में, इंग्लिश में चिल्लाना, स्क्रीमिंग करता है। क्या है वो? बीमार ला यस्माओ, साथ इसके जो नहीं सुनते, इल्ला दुआम व निदान, मगर सिर्फ हांकना और पुकारना। सुम्मुम बुक मनुम युन फहुम ला याकिलून, वो बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, जो हक बात को नहीं समझते। मुश्किल आयत है, मैं आसान करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो अक्ल इस्तेमाल किए बगैर, आंखें बंद किए अपने बड़ों के तौर तरीके पे चलते हैं और सच्ची बात समझ आ जाए फिर भी नहीं मानते, उनकी मिसाल दी है शेफर्ड की, चरवाहा। आपने कभी बकरियां चराते किसी को देखा हो तो चरवाहे जो होते हैं ना, मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं, हू हा ही, तो वो बकरियां जमा हो जाती हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो लोग अपनी अकल नहीं इस्तेमाल करते, ये असल में उस बकरियों के चरवाहे की तरह बकरियां पीछे उसके आ रही हैं कि जो सिर्फ आवाजें सुन के उसकी तरफ चल पड़े हैं। यहाँ दो लफ्ज़ हैं, उनको समझेंगे ना तो फर्क समझ आएगा, एक है दुआ और एक है निदा। दुआ क्या होती है? जिसके लिए सामने बंदा मौजूद हो, यानी दुआ क्या है? पुकारना, दावत, दुआ, बामानी लफ्ज़ होता है। जबकि जो निदा का लफ्ज़ है ना, ये कभी कभी बामानी भी होता है, बेमानी भी होता है, कोई मकसद नहीं होता। जैसे चूं ची आवाज़ें निकलती हैं ना मुंह से, शोर, चिर चिर दरवाज़ा खोलते हैं, तो ये निदा हो सकती है। और दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं कि कोई पुकारने वाला आपके सामने हो। दुआ और निदा का फर्क क्या है कि जानवरों को चरवाहे की बात समझ आए कि ना आए। बस हम किसी बिल्ली को ये तो नहीं कहते, बिल्ली उठो कुर्सी पे बैठ जाओ। अब ये बिल्ली उठो कुर्सी पे बैठ जाओ, ये क्या है? दुआ, बामानी लफ्ज बोला। हम बिल्ली को क्या कहते हैं? श्श, तो भाग जाती है। तो बिल्ली को नहीं पता कि जुमला क्या बोला है। इस तरह वो लोग जो अपनी अक्ल नहीं इस्तेमाल करते और अपने बाप दादा, रस्मों रिवाज, खानदानी तौर तरीकों पे ही चलते रहते हैं और उसी में मर जाएंगे, उनका हाल कयामत के दिन ये है कि वो हसरत करेंगे कि हम तो इंसान थे, अल्लाह ने हमें अक्ल दी थी, समझ दी थी, हम बात को सुने तो सही, और बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। खुलासा वही है बात का कि अक्ल को इस्तेमाल करो, दिल को इस्तेमाल करो। आप देखिए कि इस्लाम किसी को जबरदस्ती इस्लाम में नहीं लाता। आप पढ़ेंगे तीसरे पारे में, ला इकराह फिद दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि किसी को गन पॉइंट पे जबरदस्ती मुसलमान बनाओ, नेवर, यू कैन डू इट। क्योंकि अल्लाह ने हर बंदे को अकल दी है। चार तरीके हैं अल्लाह को पाने के, अकल, विजडम जिसको आप कहते हैं, अकल बताती है ना इस कायनात को बनाने वाला एक है तो उसका हुक्म भी मानना है। दूसरी है फितरत, इंसान से उसकी रूह की हालत में अल्लाह ताला ने वादा लिया, सूरत अल अराफ में आप पढ़ेंगे वादे अलस्त। तीसरी चीज़ है कायनात, सूरज चांद जिस पे जिक्र अभी हुआ, इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ध में, ठीक है, कायनात बोल बोल के बता रही है कि इसको कोई पैदा कर रहा है। फिर दोहराती हूँ, इंसान की अक्ल बताती है कि अल्लाह एक है और उसने इस कायनात को बनाया है। ठीक है, सबको पता है ना, मुसलमान है या काफिर, सबको ये अकल में बात है। दूसरी चीज है फितरत, इंस्टिंक्ट इंग्लिश में लिखेंगे आप इसको, वही जो अल्लाह ने लिया वादा हमारी रूहों से। तीसरी चीज है कायनात पे गौर व फिक्र कर लें, आपको पता चलता है कोई कंट्रोलर गॉड है। और चौथी आखिरी चीज है वही रेवलेशन। आज अगर मैं और आप मुसलमान है ना, तो हमें ये चार रिसेप्टर मिल गए, समझ रहे हैं? लेकिन अगर कोई काफिर है, एथियस्ट है, मुशरिक है, जो इस्लाम से दूर है, तो उसके पास क्या है? अकल उसके पास है, फितरत है, कायनात उसको भी ऐसे ही दिखती है। ये तो नहीं कि मोमिन को घास जो है वो सब्ज दिखता है और काफिर को काला दिखता है। तो तीन चीजें तो हर एक के पास है, सिर्फ इस्लाम की सूरत में इस वक्त जो हमारे पास है वो रेवोल्यूशन है। इसी के लिए अल्लाह ने हमें कहा कि वजालना को मोहम्मतम वसता, तुम इस इल्म को, दीन के पैगाम को लोगों तक आम कर दो। ये किताब, ये कुरान फितरत की किताब है। आपको पढ़ते हुए लग रहा है कि ये बातें को मेरे और आपसे को बड़ी हैं? अपनी बातें लग रही हैं, अलग, ये अल्लाह का कलाम है। तो गोया कि जब हम इस कुरान को आम करते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिल खोल देता है। और रह गई बात, वो लोग जो अकल और दिल दिमाग से काम नहीं लेते, तो सूरत अल अराफ आयत 179 का तर्जमा जाके लिखिएगा कि अल्लाह ताला कहते लहुम कुलूबुल्ला यफ़क्हून बिहा, उनके दिल तो हैं लेकिन वो उससे सोचते नहीं हैं, वलहुमा युनुल्ला युबसिरून बिहा, और उनकी आंखें भी हैं लेकिन उससे देखते नहीं है। वलहुम आज़ानुल्ला यस्माउन बिहा, कान हैं मगर वो उनसे सुनते नहीं। हाल क्या इनका? उलाइका कल अनाम, ये चौपाए हैं, कैटल्स हैं। बलहुम अदल, ये तो उससे भी भटके हुए हैं। कैसे? कि जानवरों को भी पता है कि जिस मालिक का रिज़्क़ खाते हैं उसके आगे झुकना है, लेकिन ये इंसान अल्लाह के आगे नहीं झुकते। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस इल्म को हमारे खिलाफ बोझ ना बनाए। जैसे सूरह जुमा आयत 5 में अल्लाह ताला यहूद के उलमा की मिसाल दे के कहते हैं कि मसलुल लजीना हुम्मिलुत तौरात, वो लोग जिनको तौरात दी गई थी, उठवाई गई थी, फिर उन्होंने उसको ना उठाया तो उनकी मिसाल गधे की है। तो ये इल्म गधे का बोझ बन जाएगा अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको तासुबात से ऊपर करके, खुले दिल से अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके, शऊर को इस्तेमाल करके अल्लाह तक पहुँचने वाला बना दे। सूरह हज की आयत नंबर 46 में आता है कि फ़इन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबुल्लती फिस्सुदूर, के आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं जो सीनों में। तो कुछ लोगों की आंखें अंधी होती हैं, कुछ के दिल अंधे होते हैं। अक्ल का सबक बहुत अहम है। अगर आपने वो सबक सुन लिया ना, तो आपको एक स्ट्रेच में पता चल जाएगा कि इस्लाम में क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। और आपको हैरत होगी, इतनी बड़ी कायनात, कितना कुछ है इस दुनिया में। किसी ग्रोसरी स्टोर का सोचे, सिर्फ 4 चीज़ें हराम है। वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में कल देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अमल वाला बना दे।
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي